हरे कृष्णा, श्रीमद् भगवत गीता चैप्टर 7 वर्स नंबर 28। इस आध्यात्मिक ज्ञान में प्रवेश करने से पहले गुरु अर्गारंग से कृपा की याचना करते हुए मंगल आचरण करेंगे, ताकि हम जो अध्ययन कर रहे हैं उसका पूरा पूरा लाभ प्राप्त हो सके, जो कि है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टम् स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्दे अहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलम् श्रीगुरुन् वैष्णवाश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथं वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवम्। श्रीराधा कृष्णपादं सहगणललिता श्रीविशाखान्विताश्च। हे कृष्णकरुणासिन्धु दीनबन्धु जगत्पते, गोपीश गोपीकान्ता श्रीराधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्तकाञ्चनं गौरङ्गी श्रीराधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुतदेवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृन्द। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे। श्रीमद् भगवत गीता मात की जय हो। सातवां अध्याय द नॉलेज ऑफ एब्सोल्यूट भगवत ज्ञान। श्लोक नंबर 28। भगवान श्री कृष्ण के मुखारविंद से निकले हुए इन अत्यंत ही पवित्र शब्दों को मेरे साथ साथ उच्चारण करने का प्रयास कीजिए। भगवान कहते हैं, येषां त्वन्तगतं पापं जनानां पुण्यकर्मणां ते द्वन्द्वमोहनिर्मुक्ता भजन्ते मां दृढव्रता। येषां त्वन्तगतं पापं जनानां पुण्यकर्मणां द्वन्द्वमोहनिर्मुक्ता भजन्ति मां दृढव्रता ईशं त्वन्तर्गतं पापं जनानां पुण्यकर्मणां ते द्वन्द्वमोहनिर्मुक्ता भजन्ति मां दृढव्रत शब्दात् येषां यानी जिन 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 तू लेकिन अंतगतम यानी पूर्णतया नष्ट पापम अपराध जनानाम मनुष्यों का पुण्य कर्मणाम यानी जिनके पुण्य पवित्र कर्म जिनके पहले जन्म में पुण्य कर्मणाम यानी पहले जिनके अपराध नष्ट हो गए हैं और उनके पुण्य कर्म एकत्रित हैं वही ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता वही द्वंद्व और मोह से मुक्त हो सकते हैं और भजन्ते माम दृढ़व्रता और भजन्ते मतलब भक्ति में तत्पर हो सकते हैं माम यानी मुझे कृष्ण कहते हैं सिर्फ वही व्यक्ति जिनके अपराध नष्ट हो गए हैं और जिनके पुण्य कर्म बहुत ज्यादा उदय हो गए हैं सिर्फ वही द्वंद्व और मोह से मुक्त हो सकते हैं और भजन्ते माम दृढ़व्रता और बहुत ही संकल्प पूर्वक दृढ़ता के साथ मेरी भक्ति कर सकते हैं। अनुवाद जिन मनुष्यों ने पूर्व जन्मों में तथा इस जन्म में पुण्य कर्म किए हैं और जिनके पाप कर्मों का पूर्णतया उच्छेदन हो चुका है वे मोह के द्वंद्वों से मुक्त हो जाते हैं और वे संकल्प पूर्वक मेरी सेवा में तत्पर होते हैं। श्री प्रभुपाद जी अत्यंत ही सुंदर रीति से समझाएंगे तात्पर्य श्री प्रभुपाद द्वारा। श्री प्रभुपाद की जय हो। श्री प्रभुपाद जी समझा रहे हैं कि इस अध्याय में उन लोगों का उल्लेख है जो दिव्य पद को प्राप्त करने के अधिकारी हैं, जो पापी नास्तिक मूर्ख तथा कपटी हैं, उनके लिए इच्छा तथा घृणा के द्वंद्वों को पार कर पाना कठिन है। लेकिन केवल ऐसे पुरुष भक्ति स्वीकार करके क्रमशः भगवान के शुद्ध ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं जिन्होंने धर्म के विधि विधानों का अभ्यास करने पुण्य कर्म करने तथा पाप कर्मों के जीतने में अपना जीवन लगाया है। फिर वे क्रमशः भगवान का ध्यान समाधि में करते हैं। आध्यात्मिक पद पर आसीन होने की यही विधि है। शुद्ध भक्तों की संगति में कृष्ण भावनामृत के अंतर्गत ही ऐसी पद प्राप्ति संभव है, क्योंकि महान भक्तों की संगति से ही मनुष्य मोह से उभर सकता है। श्रीमद् भागवतम 5.5.2 में कहा गया है कि यदि कोई सचमुच मुक्ति चाहता है तो उसे भक्तों की सेवा करनी चाहिए। महत सेवां द्वारम आहुर विमुक्तये। वास्तव में यदि किसी को मुक्ति की प्राप्ति करनी है तो क्या करना है, महत सेवां द्वारम, उसका एक ही द्वार है कि वो भक्तों की सेवा करे। किंतु जो भौतिकवादी पुरुषों की संगति करता है वह संसार के गहन अंधकार की ओर अग्रसर होता है। तमो द्वारम येषताम येषिताम संगितो असंगम। जो असंग की संगति करता है यानी जो दुष्टों की संगति करता है भौतिकवादी लोगों की संगति करता है वो गहन तमो द्वारम गहन अंधकार में जाता है। भगवान के सारे भक्त विश्व भर का भ्रमण इसीलिए करते हैं जिससे वे भद्र जीवों को उनके मोह से उभार सके। मायावादी यह नहीं जान पाते कि परमेश्वर के अधीन अपनी स्वाभाविक स्थिति को भूलना ही ईश्वरीय नियम की सबसे बड़ी अवहेलना है। जब तक वह अपनी स्वाभाविक स्थिति को पुनः प्राप्त नहीं कर लेता तब तक परमेश्वर को समझ पाना या संकल्प के साथ उनकी दिव्य प्रेमा भक्ति में पूर्णतया प्रवृत्त हो पाना कठिन है। श्रील प्रभुपाद की जय हो। मूकं कुरु तु वाचालं पंगुं लंघयते गिरं यत्कृपातमहं वंदे श्रीगुरु दीनतारणं। जैसा कि हमने श्लोक नंबर 27 में पढ़ा, इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहं सर्गे यन्ति परन्तप। भगवान ने कहा, हे परन्तप, हे शत्रु विजेता, समस्त जीव जन्म लेकर इच्छा तथा घृणा से उत्पन्न द्वंद्वों से मोहग्रस्त होकर मोह को प्राप्त होते हैं। अब जो मोह को प्राप्त है वो भला भगवान की भक्ति कैसे कर सकता है? वो जो कि द्वंद्वों में फंसा हुआ है और जो कि शुद्ध ज्ञान से बहुत दूर है, जिसको अज्ञानता और मोह ने जिसकी बुद्धि को हरण कर लिया है, वो तो भगवान की शरण में नहीं जा सकता। तो भगवान आज उस प्रॉब्लम की सॉल्यूशन बताते हैं कि द्वंद्व और मोह से मुक्ति किस प्रकार प्राप्त हो सकती। भगवान कहते हैं, येषां त्वंतगतं पापं, जिनके अपराध पूर्णतया नष्ट हो गए हैं, जनानाम पुण्य कर्मणाम, और जिन्होंने पूर्व जन्मों में और इस जन्म में भी पुण्य कर्म किए हैं, सिर्फ वही ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता, सिर्फ वही द्वंद्व और मोह से मुक्त हो सकते हैं। और भजन्ते माम दृढ़व्रता, और दृढ़ व्रत के साथ, संकल्प के साथ मेरा भजन कर सकते हैं। यानी कि यहाँ पर भगवान जो है इस श्लोक में बता रहे हैं कि भगवान की भक्ति का सौभाग्य प्राप्त करना कितना दुर्लभ और कितना महत्वपूर्ण है। कोई साधारण, श्रील प्रभुपाद जी ने बहुत सुंदर बताया है कि जो पापी होते, नास्तिक होते, मूर्ख होते, कपटी होते, उनके लिए इच्छा तथा घृणा के द्वंद्वों को पार करना इतना कठिन है कि वो इसको ही पार नहीं कर पाते, तो फिर भगवान की भक्ति करना तो संभव ही नहीं उनके लिए। इसलिए वो भगवान की भक्ति नहीं करते, क्योंकि वो अपनी इच्छाओं में, अपनी घृणाओं में, इन द्वंद्वों में इतने फंसे हुए होते हैं कि उनके मन में भगवान के लिए भक्ति करने का दृढ़ संकल्प उत्पन्न ही नहीं होता है। तो भक्ति स्वीकार कर कौन से लोग कर सकते हैं, कौन से लोग भक्ति सरलता से कर सकते हैं? श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, केवल ऐसे पुरुष ही भक्ति स्वीकार कर सकते हैं, करके क्रमशः भगवान के शुद्ध ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं, जिन्होंने धर्म के विधि विधानों का अभ्यास करके पुण्य करने तथा पाप कर्मों के जीवन में अपना जीवन केवल ऐसे ही पुरुष भक्ति स्वीकार करके क्रमशः भगवान के शुद्ध ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं, जिन्होंने धर्म के विधि विधानों का अभ्यास करने, पुण्य कर्म करने तथा पाप कर्मों को जीतने के लिए अपना जीवन लगाया है। यानी कि यह जो मनुष्य जन्म है वो इसलिए नहीं मिला है कि हम अपने इस जन्म में केवल अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए हर कार्य करते रहे। यह संसार में जो मनुष्य जन्म मिला है वो उसको प्राप्त करने के लिए मिला है, जो विगत करोड़ों जन्मों से हम प्राप्त नहीं कर पाए हैं। अगर श्रील प्रभुपाद जी बताएंगे आगे कि अगर इस मनुष्य जन्म में भी वही भौतिक वस्तुएं प्राप्त करने के लिए हम अपने जीवन को व्यस्त करते हैं या वेस्ट करते हैं, जो कि हम जानवरों की योनि में भी प्राप्त कर सकते हैं, तो क्या लाभ उठाया इस जीवन का? जैसा कि हमने पढ़ा 7.19 में भगवान ने बताया, भवनाम जन्म नामंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते। भगवान कृष्ण कहते हैं कि कई जन्मों के बाद, करोड़ों करोड़ जन्मों के बाद ही किसी को वास्तविक ज्ञान प्राप्त हो सकता है, और वो वासुदेव सर्वम इति स महात्मा सुदुर्लभ, वो मेरी शरण में आता है और ऐसा महात्मा अत्यंत ही दुर्लभ होता है। जैसे कि, और ये सौभाग्य कैसे प्राप्त हो सकता है? अगर हम सोचें कि पिछले जन्मों के बारे में भगवान ने कहा है, जिन मनुष्यों ने पूर्व जन्म में भी पुण्य कर्म किए हैं और इस जन्म में भी पुण्य कर्म किए हैं, जिनके अपराध पूर्णतया नष्ट हो चुके हैं, सिर्फ वही मेरी भक्ति कर सकता है, फिर तो हमारे लिए भक्ति करना संभव ही नहीं है। तो फिर हमें कोई ऐसा रास्ता निकालना है जिससे कि हमारे अपराध क्षय हो जाए। और उसका एक सरल रास्ता, जैसे हमने अभी मंगलाचरण में एक श्लोक उच्चारण किया था, वंचा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एवच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वास्तव में भगवान के जो सच्चे वैष्णव और साधु हैं, वो कल्पतरु वृक्ष की तरह हैं। और पतितानां पावनेभ्यो, हम जैसी पतित आत्माओं को पवित्र करने वाले हैं। तो सच्चे वैष्णवों और साधुओं की कृपा से हमें वो वस्तु प्राप्त हो जाती है जिसको प्राप्त करने में कई जन्म लग सकते हैं। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, ब्रह्मांड भ्रम्यते कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण कृपा पाइए भक्ति लता बीज। करोड़ों करोड़ों जन्मों तक जीव इस संसार में भ्रमण कर रहा है, भटक रहा है, लेकिन जब कोई सतगुरु उसके ऊपर कृपा करते हैं, कृष्ण जब और फिर कृष्ण की कृपा से सतगुरु प्राप्त होते हैं, सतगुरु भक्ति का बीज प्रदान करते हैं, इसी को कृपा या दया कहते हैं। जब हम कृपा का शब्द उच्चारण करते हैं, तो उसका अर्थ ये होता है कि हमें वो वस्तु मिल जाए जिसके हम लायक ही नहीं है। अगर आप किसी दुकान पर जाते हैं और पूछते हैं कि ये वस्तु कितने की है, वो बोलेगा 20 रुपए की है। आप उसको 20 रुपए दे दो और वो वस्तु आपको दे दे, तो क्या आप बोलोगे क्या मेरे ऊपर कृपा की? नहीं। लेकिन कृपा कब होती है कि जब आप भूखे मर रहे हो, आपके पास कुछ नहीं खाने के लिए, और आप किसी से मांगते हैं और वो उधार भावना से आपको कुछ देता है, तब आप उसको कृपा कहते हैं या दया कहते हैं। कृपा सिंधु भय एवचन, भगवान के भक्त कृपा के सागर हैं और कृपा के सिंधु हैं, क्योंकि वो हमें वो चीज प्रदान कर सकते हैं जिनको प्राप्त करने के हम लायक ही नहीं हैं। ये भगवान का नाम कीर्तन करना, भक्तों का संग करना, इसके लिए वैसे वैसे तो भगवान ने कहा, ये शाम त्वंतगतम पापम जनानाम पुण्य कर्मणा, तुम्हारे जब पूर्व जन्म के समस्त अपराध नष्ट हो जाएंगे और केवल तुम्हारे पास पुण्यों की पूंजी रह जाएगी, तब ही ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़व्रता, तभी तुम मुझे दृढ़ संकल्प के साथ भजन कर सकते हो, द्वंद्व और मोह से मुक्त हो सकते हो। लेकिन ये शुद्ध भक्त भगवान के इतने करुणामयी है, इतने कृपामयी है कि वो ना लायक होते हुए भी हमें वो वस्तु प्रदान करते हैं। इसके लिए वैसे तो वास्तव में हजारों जन्मों तक शुभ कार्य करना आवश्यक होता है, लेकिन ये जो भगवान के भक्त होते हैं, वो इतने दयालु होते हैं कि हालांकि हम अयोग्य हैं, और फिर भी वो हमें हरि नाम और भगवान की सेवा प्रदान कर रहे हैं। तो अब ये प्रश्न उठता है कि कितने हम भाग्यवान हैं। अब देखो, एक कृपा तो भगवान ने कर दी संतों के द्वारा कि वो हमें हरि नाम देते हैं, भगवान की भक्ति करना सिखाते हैं, भगवान के प्रति श्रवण कराते हैं, जिसके कारण हृदय में भगवान की भक्ति का दृढ़ संकल्प उत्पन्न होता है। ये तो कृपा उनकी ओर से हो गई, लेकिन हम अपने भाग्य को किस प्रकार से उज्जवल करते हैं, इस बात पर निर्भर करती है कि क्या हम इस कृपा को स्वीकार करने के लिए तैयार हैं। हम इसको सही तरीके से तभी कृपा को ले सकते हैं जब इसकी असीमित कीमत को जान सके। भगवान के महान भक्त तो दिन रात केवल यही उनकी यही एक स्ट्रगल होती है, यही कोशिश होती है कि किस तरह से हम जीव मात्र को भगवान की भक्ति में प्रवृत्त कर सके। इसीलिए श्रील प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में बताया कि भगवान के सारे भक्त विश्व भर का भ्रमण इसीलिए करते हैं जिससे वे बद्ध जीवों को उनके मोह से उबार सके। प्रवीजिकार आचार्य कि वो एक जगह पर टिकते नहीं है, वो सदैव भ्रमण करते हैं कि किसी प्रकार से वो इन व्यक्तियों की जो मनुष्य संसार में पतित जीव हैं, जो बारंबार जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसे हुए हैं, द्वंद्व और मोह में फंसे हुए हैं, जो भगवान की भक्ति को प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, उनको इस द्वंद्व और मोह से उभारने के लिए और भगवान की भक्ति प्रदान करने के लिए वो भ्रमण करते हैं। लेकिन हम कितना उसका फायदा उठाते हैं, उसका कितना लाभ ले रहे हैं, इससे ही हमें पता चलता है कि हम कितने भाग्यवान हैं। भगवान के एक महान भक्त की कथा है। वो वृंदावन धाम में निवास करते थे। वृंदावन धाम में एक स्थान है जिसका नाम है द्वादश आदित्य तिला। आदित्य कहते हैं सूर्य को और द्वादश कहते हैं बारह। याद है भक्तों, जब कृष्ण ने कालिया का दमन किया था तो कालिया पर नृत्य किया था, क्योंकि इतना समय भगवान यमुना नदी के अंदर ही रहे थे और वहां पर कालिया के साथ युद्ध हुआ था, और उसके उपरांत जब भगवान ने नृत्य किया तो उसके कारण भगवान को बहुत ठंड लगी। वो यमुना नदी के पास एक छोटे से स्थान में गए और वहां पर आदित्य के 12 पुत्र सूर्य रूप में प्रकट हुए और भगवान को गर्मी प्रदान कर, क्योंकि भगवान को बहुत सर्दी लग रही थी, भगवान कांप रहे थे। अब एक सूर्य से भगवान को गर्मी नहीं हो रही, पूरी नहीं हो रही थी, तो फिर भगवान के शरीर को गर्मी प्रदान करने के लिए आदित्य के 12 पुत्र सूर्य बनकर प्रकट हुए और भगवान को बहुत गर्मी महसूस होने लगी। वास्तव में भगवान का शरीर हमारी तरह नहीं है कि वो गर्मी और सर्दी से प्रभावित हो, क्योंकि वे तो सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ द गॉडहेड हैं, वो तो परम आत्मा है। भगवान का शरीर भौतिक वस्तुओं का बना हुआ नहीं है। कृष्ण के अलावा जो कोई भी अपने आप को भगवान मानता है तो वो पागल है। भगवान तो पूरी दुनिया के ईश्वर हैं। हमको सर्दी में बुखार हो जाता है, ठंड लग जाती है, छींकी आना शुरू होती है, उसको भी हम रोक नहीं सकते। और यहाँ संसार के लोग जो कि इन छोटी छोटी चीजों पर भी कंट्रोल नहीं करते, वो अपने आप को स्वामी मानते हैं, भगवान मानते हैं। वास्तव में भक्तों, जीव का स्वरूप ही कृष्ण का दास है। हम तो कृष्ण के नित्य दास हैं। भारत तो यहाँ पर यह प्रश्न उठता है कि यदि भगवान का शरीर भौतिक नहीं है तो कृष्ण को सर्दी क्यों लगी? इसका उत्तर ये है कि क्योंकि वो अपने भक्तों को अवसर प्रदान करते हैं कि वो उन्हें गर्मी प्रदान कर सकें। वास्तव में भगवान जो भी कार्य करते हैं वो केवल और केवल अपने भक्तों पर कृपा करने के लिए करते हैं। यशोदा मैया के घर में भगवान भूख से रोते हैं। क्यों रोते हैं? क्योंकि वो मैया को अवसर प्रदान करना चाहते हैं कि वो कृष्ण को स्तनपान कराए। कृष्ण को किसी भी वस्तु की आवश्यकता नहीं है, कृष्ण तो आत्मा में संतुष्ट है, लेकिन भक्तों को सेवा का अवसर प्रदान करने के लिए वो ऐसी लीलाएं करते हैं और ऐसा लगता है कि उनको किसी चीज की आवश्यकता है, परंतु भगवान को किसी भी वस्तु की आवश्यकता नहीं होती। और केवल और केवल भगवान का पवित्र नाम ही जीवों की, जो भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं, उनकी एकमात्र आवश्यकता होती है। और वो जानते हैं कि केवल इसी पवित्र भगवान के पवित्र नाम को जप करने से ही हमारा कल्याण हो सकता है। आज से 500 साल पहले भगवान के एक महान भक्त यहाँ पर इस संसार में आए, जब महाप्रभु, जो कि महाप्रभु के पार्षद भी थे, उनका नाम सनातन गोस्वामी था। उनके पास रहने के लिए कोई घर नहीं था, तो वो हर रात्रि को अलग अलग पेड़ के नीचे सोते थे और वो रोज खाते भी नहीं थे, भिक्षा भी नहीं करते थे। वो रोज कभी कभी एक, मतलब दो दिन के बाद एक बार गांव के लोगों से कुछ रोटी दान में लेकर आते थे और उसको खाते थे। जहां तक कपड़ों का सवाल होता था, जब वो कभी भी कोई नया कपड़े नहीं पहनते थे, बस जो फटा हुआ कपड़ा धोती उनके पास होती थी, एक को धोते थे, और कोई रास्ते में कोई फटा हुआ वस्त्र पहन प्राप्त हो जाता था, उसको धोकर पहन लेते थे। तो वो कोई भी भौतिक वस्तु को स्वीकार नहीं करते थे अपनी इंद्र तृप्ति के लिए, लेकिन वही सनातन गोस्वामी वृंदावन में आने से पहले पूर्व बंगाल के वही प्रधानमंत्री थे, उनके पास बहुत सुंदर महल था, बागीचा था, बहुत सारे नौकर चाकर, बहुत सारा वैभव था, परंतु उन्होंने इस सब का परित्याग कर दिया क्योंकि उनको ये बात समझ में आ गई थी कि वृंदावन धाम और भगवान की सेवा में रहना कितना कीमती है। एक बार वो नहाकर यमुना में स्नान करके आ रहे थे तो रास्ते में उन्हें पारसमणि दिखी। उन्होंने पारसमणि को देखा, लेकिन क्योंकि पारसमणि को उनको कोई इसकी आवश्यकता नहीं थी, तो ऐसे वो चल रहे थे यमुना के किनारे पर, बहुत मट्टी थी और चलते चलते थोड़ी मट्टी उनके पांव से पारसमणि के ऊपर पड़ गई और वो दिखने नहीं लगी। और इसी समय एक शिव जी का भक्त था जिसने शिव जी को बहुत बहुत भक्ति की, और फिर उन जब शिव जी प्रकट हुए तो बोला क्या चाहिए। तब उस भक्त ने कहा मैं बहुत गरीब हूँ, मुझे धन की आवश्यकता है। तो शिव जी ने कहा मेरा एक बहुत ही शुद्ध भक्त है सनातन गोस्वामी, वो भगवान कृष्ण का भक्त है, आप उसके पास जाइए वृंदावन में, वो आपको पारसमणि देगा, तो आप जितना भी उससे धनी होना चाहते हो सकते हो। तो वो सनातन गोस्वामी के पास गया कि क्या आपके पास पारसमणि है। तो सनातन गोस्वामी ने कहा हाँ मेरे पास है। तो बोला मुझे वो मणि चाहिए क्योंकि मुझे शिवजी ने आपके पास भेजा है। तो सनातन गोस्वामी ने कहा ये वो जो मट्टी पड़ी हुई है ना उसके नीचे खोजो, वहां पर आपको मिलेगी। तो वहां पर जाकर उसने मट्टी को खोजा तो वहां पर उसको पारसमणि मिली, और पारसमणि प्राप्त करके वो पुनः अपने गाँव में चला गया, और उस पारसमणि के द्वारा बहुत 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 सारा धन उसने प्राप्त किया। उसके पास बहुत सारे बंगलों, गाड़ियां, मोटर, चाकर, ये सब बहुत सारे हो गए, परंतु फिर भी उसके मन को शांति प्राप्त नहीं हुई। फिर वो सोचने लगा कि अब तो इस जगत में जो कुछ भी मैं चाहता हूँ इस पारसमणि से प्राप्त कर सकता हूँ, परंतु मैं फिर भी सुखी नहीं हूँ। इसका अर्थ है कि जरूर इससे भी कोई मूल्यवान और सीक्रेट वस्तु है जो कि जरूर सनातन गोस्वामी के पास होगी। अगर ऐसा नहीं होता तो वो इसको ऐसे कचरे में कैसे फेंक सकते थे पारसमणि को। ये सोचकर वो पुनः वृंदावन गए और सनातन गोस्वामी से कहा कि क्योंकि आपने पारसमणि को कचरे में फेंक दिया था तो क्या आपके पास इससे भी ज्यादा कीमती कोई वस्तु है। तब सनातन गोस्वामी ने कहा कि मेरे पास जो वस्तु है वो इस संसार की सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण वस्तु है। हाँ मेरे पास लाखों गुना अच्छी वस्तु है इस पारसमणि से। तब वो व्यक्ति बोला मुझे उसके विषय में बताइए, जल्दी बताइए। सनातन गोस्वामी ने कहा कि मैं आपको बताऊंगा, परंतु आपके पास जो सबसे ज्यादा कीमती वस्तु है इस समय उसको आप पहले यमुना में फेंक कर आइए। तब वो सोचने लगा कि अगर मैंने पारसमणि को यमुना में फेंक दिया फिर तो वो कभी भी मुझे वापस प्राप्त नहीं होगी, लेकिन फिर भी वो सोच रहा था कि इससे भी अधिक महत्वपूर्ण चीज मिलने वाली है। तो फिर उसने ऐसा ही किया और सनातन गोस्वामी को आके कहा कि मैंने पारसमणि यमुना में फेंक दी है, अब मुझे जल्दी उस वस्तु के विषय में बताइए जो कि आपके पास है, जो सबसे महत्वपूर्ण वस्तु है। अब तो मैंने पारसमणि भी फेंक दी है, आप मुझे उसके विषय में कुछ बताइए। तब सनातन गोस्वामी बोले कि अभी जो पूरे ब्रह्मांड में सबसे अधिक महत्वपूर्ण वस्तु है वो मैं तुम्हें देने वाला हूँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसी से वास्तव में जीव को आनंद की प्राप्ति हो सकती है, और जो सुख तुम्हें चाहिए, तुम्हारी आत्मा को जो शांति चाहिए वो केवल इसी के द्वारा प्राप्त हो सकती। आप बैठिए यहाँ पर और ध्यान से सुनिए और मेरे पीछे पीछे बोलिए। तब सनातन गोस्वामी ने उनको महामंत्र पढ़ाया, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस महामंत्र को शुद्ध भक्त सनातन गोस्वामी के द्वारा श्रवण करके वो अत्यंत ही आनंद में विभोर होने लगा, क्योंकि महामंत्र एक ऐसी मणि है जो हमारे हृदय को पवित्र करके सोना बना देती है। पारस मणि तो लोहे को सोना बनाती है, परंतु ये जो महामंत्र है वो हमारे चेतो दर्पण मार्जनम हमारे हृदय को सोना बना देता है। और व्यक्ति का स्वाभाविक प्रेम जो भगवान के प्रति उसके हृदय में है, उस जो कि जन्म जन्मांतर से जीव जिस स्वभाव को पुनः खोज रहा है, जिसको प्राप्त करके ही जीव को सुख आनंद प्राप्त हो सकता है, ये महामंत्र वो स्वभाव जी को प्रदान करता है। तो हमें समझना चाहिए कि ऐसे भक्तों का संग जो दूसरों को कृष्ण प्रेम दे रहे हैं, इससे बढ़कर और कोई संपत्ति नहीं है। श्रीमद् भागवतम में सुखदेव गोस्वामी की जन्म कथा आती है। सुखदेव गोस्वामी भगवान के अवतार वेद व्यास जी के पुत्र थे। वो अपनी माता के गर्भ में ही थे, वो पहले से ही मुक्त पुरुष थे, वो मुक्ति में इतने लीन थे कि उनको इंद्रिय तृप्ति की कोई इच्छा ही नहीं थी, दुनिया की कोई चीज उनको आकर्षित नहीं कर सकती थी। वो सोच रहे थे कि मैं माँ के गर्भ में ही आराम से बैठकर भजन करूंगा और बस मृत्यु तक अंदर ही रहूंगा। वो अपनी माँ के गर्भ में 16 साल तक रहे और बाहर आने से इनकार कर दिया। स्वाभाविक रूप से उनकी माता को बहुत कष्ट हो रहा था और उनके पिता भी अपने पुत्र को देखना चाहते थे। सुखदेव गोस्वामी सोचने लगे कि मैं दुनिया में आऊंगा तो इतने बंधन हैं कि अगर मैं बाहर निकला तो शायद ये ब्रह्म मुक्ति में खो दूंगा। और उस समय वेद व्यास जी ने भगवान कृष्ण की सुंदर कथाओं का गुणगान किया। और जब सुखदेव गोस्वामी गर्भ से बाहर आए तब भी माता पिता के मोह को बिल्कुल भी नकार दिया और डायरेक्ट से वन में चले गए साधना करने के लिए। लेकिन वेद व्यास जी ने अपने शिष्यों को भगवान की पवित्र कथाओं के विषय में पढ़ाकर उस वन में भेजा। और जब सुखदेव गोस्वामी ने भगवान की पवित्र कथाओं को सुना, भागवतम के महान श्लोकों को श्रवण किया, तो वो मुक्त पुरुष भी उन शब्दों से आकर्षित हो गए और वो पुनः उन शिष्यों से पूछने लगे कि आपने इतने महान श्लोक कहाँ से सीखे, हमें भी सिखाई, मुझे भी सीखना है, मुझे भी श्रवण करना, कितना आनंद है इन भगवान की कथाओं में, कितना रस है, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, मुझे भी कुछ बताइए। तब वो शिष्य कहने लगे, हमें तो केवल 2-4 श्लोक ही आते हैं, आप उनके लिए इतने उतावले हो रहे हैं, हमारे गुरु महाराज ने तो पूरा भागवत लिखा है, आप उनके पास चलिए, 18,000 श्लोक आपको पढ़ाएंगे। तो यह मुक्त आत्मा भी जो होती है वो भी भगवान की कथाओं की आकर्षित होती है। इसीलिए भगवान ने कहा है, येषां त्वन्तगतं पापं जनानां पुण्यकर्मणां ते द्वंद्व मोह निर्मुक्त्वा भजन्ते मां दृढावृत्ता। यानी कि मुक्त पद को प्राप्त होना आपके जीवन का लक्ष्य नहीं है, आत्मा का लक्ष्य ये नहीं है कि वो मुक्ति को प्राप्त करे और ब्रह्म ज्योति में लीन हो जाए। आत्मा का लक्ष्य क्या है, भजन्ते माम दृढव्रता, भगवान का भजन करना, भगवान की पवित्र कथाओं का श्रवण करना, भगवान के पवित्र नाम का जप करना, ये है वास्तव में आत्मा को आनंद देने वाला एकमात्र जरिया। और जब सुखदेव गोस्वामी ने इन श्लोकों को सुना, सीखा वेद व्यास जी से, तो उन्हें लगा कि भगवान का नाम श्रवण और कीर्तन तो उस मुक्ति से करोड़ गुना अधिक है। वो सिर्फ कृष्ण कथा को श्रवण करने के लिए ही गर्भ से बाहर निकले थे और केवल कृष्ण की कथाओं को श्रवण करने में ही उनको आनंद आया। श्रीमद् भागवतम में आता है कि जो आत्मा राम पुरुष है वो भी भगवान के बारे में श्रवण करने में बहुत आनंद प्राप्त करते हैं। हम इससे ये समझ सकते हैं कि भक्तों का संग करना, उनसे श्रवण करना, उनके साथ कीर्तन करना कितना आवश्यक है। फिर भी हम देखते हैं कि संसार में जीव कितने अभागे हैं। वास्तव में हम भी उन्हीं में आते हैं, ऐसी भौतिक वस्तुओं में और भौतिक जिम्मेदारियों में इतने फंसे हुए हैं कि हमारे पास समय ही नहीं होता है कि हम शुद्ध भक्तों का संग करें, नाम का संकीर्तन करें। लेकिन भौतिक वस्तुएं चाहे हमें जितनी ही प्राप्त क्यों ना हो जाए, भौतिक कितनी ही वस्तुएं हम, कितना ही बड़ा महल हो हमारा, गाड़ियां हो, बंगलो हो, कुछ भी हो, लेकिन वो कुछ नहीं है कांच के टुकड़ों के अलावा। भगवान का नाम और भगवान की कथाएं तो पारस मनी है। इसी ध्रुव महाराज जब जंगल में गए थे तो वास्तव में इसीलिए गए थे कि उनको ब्रह्मा जी से भी अधिक विशाल राज्य प्राप्त करना था। और नारद मुनि की कृपा से जब विष्णु भगवान प्रकट हुए तो उन्होंने पूछा, ध्रुव मांगो तुम्हें क्या चाहिए? तो फिर ध्रुव ने कहा, स्वामी कृतार्थो हम वरम नवांसे, आपका दर्शन मिल गया भगवान, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं तो कांच के टुकड़ों को प्राप्त करने के लिए आपके पास आया था, मगर मुझे आपकी कृपा से अब तो हीरा प्राप्त हो गया है। अब इस भक्ति के, आपके पवित्र नाम के, आपकी भक्ति के अतिरिक्त मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। लेकिन आज इस संसार में बड़े दुर्भाग्य की बात है कि हम सबको हरि कथा का हीरा मिल रहा है, परंतु हम सब वो ना लेकर कांच के टुकड़े पकड़ने में इतना ज्यादा व्यस्त हो गए हैं। इसलिए भगवान श्री कृष्ण बताते हैं 7.15 में, नमाम दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा मायया प्रहृत ज्ञान आसुरम भावम आश्रित। लोग जो गधे के समान केवल कार्य करते हैं, बस अपनी जिम्मेदारियों का बोझा उठाकर चलते रहते हैं और साधु संग और हरि कथा का लाभ नहीं लेते हैं, वो अपने इस मनुष्य जीवन का दुरुपयोग कर रहे हैं। वास्तव में यह जो मनुष्य जीवन है वो क्यों मिला है? अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, मानव जीवन इसी वस्तु के लिए बनाया गया है। शास्त्र कहता है, नाहम देह बाजा निर्लोके अष्टान कामन अहर्ते विट्ट भुजान। विट्ट भुजान कहते हैं गंदगी खाने, विष्ठा खाने वाले सुअर को। तो शास्त्र कहता है ये जो इंद्रिय तृप्ति है, जो ये जो इंद्रिय तृप्ति से प्राप्त होने वाला सुख है, वो तो विष्ठा खाने वाले कुत्ते और सुअर को भी मिल सकता है। इसको प्राप्त करना कोई खास महत्व नहीं है। मानव जीवन तो पशुओं की तरह इंद्रिय तृप्ति का सुख प्राप्त करने की नकल करने के लिए नहीं मिला है। वास्तव में ये मानव जीवन तो सिर्फ आत्म साक्षात्कार के लिए बनाया गया है। मानव जीवन इसीलिए है कि हम जन्म मृत्यु के चक्कर से छुटकारा प्राप्त कर सके। भगवान श्री कृष्ण की, राधा कृष्ण की नित्य लीलाओं में प्रवेश करने के लिए ये स्वर्ण अवसर है और इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए हमें त्याग करना है। और सभी शास्त्रों का आदेश है कि मानव जीवन का उद्देश्य है यज्ञ करना। यदि हम यज्ञ करेंगे, भगवान कहते हैं यज्ञार्थात् कर्मण्यत्र लोकोयम कर्म बंधन, आप जो कुछ भी करोगे अगर वो यज्ञ नहीं है तो वो आपके बंधन का कारण बनेगा। और ये यज्ञ क्या है? शास्त्र कहता है, भागवत कहता है, यज्ञ संकीर्तन प्राय ही यजंती ही सुमेधस, बुद्धिमान बनो और वास्तविक यज्ञ जो कि संकीर्तन का यज्ञ है उसे करने का करना शुरू करो। तो ये जो महामंत्र है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये महामंत्र ही इस कलयुग में एकमात्र ऐसा द्वार, ऐसा जरिया है जिससे हम इस श्लोक तक पहुंच सकते हैं। जैसे भगवान ने कहा, ये शाम त्वंतगतम पापम जनानाम पुण्य कर्मणा ते द्वंद्व मोह निर्मुक्तो यजन्ते ही यजन्ते माम दृढ़व्रता। अगर मुझे संकल्प पूर्वक भजन करना, मेरा भजन करना है, तो उसके लिए आपके अंदर क्या क्वालिटी होनी चाहिए? समस्त अपराधों को खत्म हो जाना चाहिए और पुण्य कर्म बढ़ने चाहिए। और ये केवल तभी संभव है जब हम भक्तों का संग करेंगे और भगवान के पवित्र नाम का संकीर्तन करेंगे, भगवान की कथाओं का श्रवण करेंगे, तो धीरे धीरे हमारे समस्त अपराध जो है वो नष्ट हो जाएंगे। यही मानव जीवन का उद्देश्य है कि भक्तों का संग करके, भगवान के नाम का संकीर्तन करके और भगवान की कथाओं का श्रवण करके हम सोए हुए कृष्ण प्रेम को जागृत करके अपने समस्त अपराधों का क्षय करें। और इसके लिए जरूरी नहीं है कि आपको सन्यासी होना पड़ेगा, घर छोड़ना पड़ेगा या फिर है ना ब्रह्मचारी रहना पड़ेगा। नहीं, भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं, जीवे थाको वने थाको सदा हरि बोले नाको, सुखे दुखे बोले। आप चाहे किसी भी स्थिति में हो, चाहे आप ग्रस्त हो, अपने पत्नी और बच्चों के साथ रहते हो या सन्यासी हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये समझकर कि जीवन की असली संपत्ति भगवान का नाम है, तो सच्चे दिल से उनके नाम को पुकारना ही हमारे जीवन का लक्ष्य है। और इस दुनिया के समस्त दुखों से हम तभी निवृत्त हो सकते हैं और वास्तविक सच्ची संपत्ति अर्थात कृष्ण प्रेम को प्राप्त कर सकते हैं, और वो है दिव्य चेतना की संपत्ति, कृष्ण भावना। हम चाहे जवान हो या बूढ़े हो या जो भी हो, समाज में कुछ भी हो, हमारा एक ही उद्देश्य होना चाहिए कि शुद्ध भक्तों का संग करें और महान संतों की कृपा को ग्रहण करके उनकी सेवा करें, उनसे श्रवण करें और उनके साथ भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन करें। और इस तरह से अवश्य ही जो भगवान कह रहे हैं कि भजन्ते माम दृढ़व्रता, इसी तरह से हम भगवान को दृढ़ संकल्प के साथ भज सकते हैं। अब क्योंकि इस श्लोक में तो भगवान ने यही कहा है कि येषां त्वन्तगतं पापं जनानां पुण्यकर्मणां, अगर आपके जितने भी मनुष्य हैं उनके पूर्व जन्म के पाप समाप्त हो जाएंगे और उसने पूर्व जन्म में भी पुण्य कर्म किए, इस जन्म में भी पुण्य कर्म किए, तभी वो क्या कर सकता है, भजन्ते माम दृढ़व्रता, द्वंद्व और मोह से मुक्त होकर मैं दृढ़ व्रत के साथ, संकल्प के साथ मेरा भजन कर सकता है। तो यहाँ पर हमें ये समझना है कि वास्तव में हमारे समस्त अपराध खत्म करने के लिए क्या आवश्यकता है, कि हमें भक्तों का संग करना है, श्रवण करना है और उनकी आज्ञाओं का पालन करना है। और मुख्य रूप से उनकी आज्ञाएं क्या है, यम और नियम, यानी क्या स्वीकार करना है और क्या ठुकराना है। चार प्रकार के अपराधों को त्यागना है, यानी अवैध संग, नशीली वस्तुएं शराब इत्यादि, मांस आहार और जुआ, ये चार वस्तुएं नहीं करनी है, उनको पूर्णतया परित्याग करना है। और दूसरा है क्या क्या नियम होने चाहिए, क्या क्या हमें करना है, साधु संग, भगवान की कथाओं का श्रवण, कीर्तन और भगवान के विग्रह की सेवा, भगवान को भोग लगाया हुआ प्रसाद खाना, एकादशी उपवास करना, और हम इन चीजों को अपना आधार बनाते हैं तो धीरे 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 हम बिल्कुल शुद्ध हो जाएंगे और इस तरीके से धीरे 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 पाप करने की इच्छा भी निकल जाएगी। वैसे तो जब हम पाप नहीं करते और उस वक्त भी हमारे अंदर अपराध की इच्छा रह जाती है, परंतु भगवान का पवित्र नाम अग्नि के सदृश है, वो सारे पापकारियों की इच्छा तक को भस्म कर देता है। और भगवान के श्रवण और कीर्तन करने से भी हमारा हृदय शुद्ध हो जाता है और सारा अंदर और बाहर से हम इतने पवित्र हो जाते हैं, ना हमारी इंद्रियां अपराध करने के लिए इच्छा करती हैं, ना हमारा मन इच्छा करता है। ओम अप पवित्रो पवित्रो वा सर्वाष्टम यतो पिवा यह संवृते पुंडलिकाक्षं सबाह्य वे अंतर शुचि। जो भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करते हैं वो अंदर और बाहर से पवित्र हो जाते हैं, उनके पूर्व जन्मों के समस्त अपराध नष्ट हो जाते हैं, पुण्य कर्म की पूंजी एकत्रित हो जाती है और इस जन्म में वो अपराध करने की इच्छा भी नहीं करते, तभी वो द्वंद्व और मोह से मुक्त हो जाते हैं और भगवान की दृढ़ भक्ति कर सकते हैं, भगवान की शुद्ध भक्ति का संकल्प कर सकते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, कृपया साथ रहिएगा, मेरे लिए प्रार्थना करिएगा, भूलिएगा नहीं कि मैं अपनी सेवा और साधना को अच्छे तरीके से कर सकूं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।